हाँ भाई कराम, الحمد
Recording in
لله وكفى
progress.
وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو سيرة الخلفاء الراشدين. तो इसमें हम क्या पढ़े थे भाई आखिरी दफा, किसी को याद है क्या बात हो रही थी? लिख लिया करें ना थोड़ा थोड़ा। मानेईने ज़कात के साथ जिहाद करने का मामला, हाँ इसको हमने शुरू कर लिया था क्या? लश्कर रोमन से लड़कर वापस आ गया था। हाँ, और इन्होंने लिखा है, और उसामा बैत के मुतालिक पढ़ा था, और उसामा नजरतान के लश्कर को भेजना क्यों अहम था, क्यों इतनी अहम, यानी ये मुहिम इतनी ज्यादा अहम क्यों थी कि इतने ज्यादा मुश्किल हालात में भी इतने बड़े लश्कर को नबी हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना मुनव्वरा से दूर भेज दिया। इतना दूर भेज दिया कि पूरे 2 महीने उनको वापस आने में लगे। तो 2 महीने तक मदीना मुतय्यबा जो है ना, वो एक तरह से तकरीबन खाली हो गया था लड़ने वाले लोगों से। आप कुछ बता रहे थे
बैठ
हैं? बैत
तो
का, हाँ बैत के बारे, बैत रिजवान के बारे में पढ़ा था। हाँ हम बात कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था, पढ़ नहीं रहे थे कहीं से लिखा हुआ, बल्कि बात कर रहे थे बैत के बारे में कि बैत जो है वो इतनी अहम चीज क्यों है। ठीक है, जुबान से जब इंसान कोई काम कह देता है ना कि हाँ मैं ये करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी अताअत करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके साथ मिल करके जो है वो ये काम करूंगा, तो अब ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो जाता है, इसका एक असर होता है बोलने वाले के ऊपर, और वो जो है ना खुद भी फिर कमिटेड फील करता है कि हाँ भी मैंने एक कमिटमेंट करी है, मैंने एक वादा किया है, तो अब मुझे उस वादे को निभाना चाहिए। और अगर उससे कभी इसमें कमी कोताही हो जाती है तो उसको उसका जमीर मलामत करता है कि यार तुमने तो वादा किया था, अब तुम जो है वो पीछे हट रहे हो। ठीक है, तो दो फायदे ये हो गए, और तीसरा फायदा क्या होता है इसका? दो फायदे तो उसके अपनी तरफ से हो, तीसरा फायदा
जो बैट लेने वाला होता है उसको भी एक साइकोलॉजिकल वो होता है तो
बैत लेने वाले को भी एक साइकोलॉजिकल, उसको भी एक इत्मीनान होता है कि हाँ भाई इन लोगों ने मुझसे वादा किया है, यार ठीक है ना, मुझसे वादा किया है तो अब जो है वो उम्मीद की जा सकती है कि अपने वादे को निभाएंगे भी। और उसको एक और भी इत्मीनान होता है कि अगर ये लोग वादा तोड़ेंगे ना, तो फिर मैं इन लोगों से कह सकता हूं कि भाई तुमने तो वादा किया था मुझसे, तो अब तुम इसके पीछे क्यों जा रहे हो, क्यों फिर रहे हो इस वादे से। हत्ता कि यहां तक भी होता है कि अगर वादे से वो फिर रहे हो तो फिर उनको जो है ना बाकायदा कोर्ट में भी लाया जा सकता है ना, मुकदमा भी किया जा सकता है कि आपने तो खुद साइन किया था इस एग्रीमेंट के ऊपर, अब आप जो है वो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है, अब आपको सजा भी मिल सकती है उसके ऊपर। ठीक है ना, तो इस वजह से बैत करना जो है ना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई मजाक में नहीं, हम इधर भी बैत कर लिए, उधर भी बैत कर लिए, इसे भी बैत कर लिए, इधर भी साइन कर दिया, उधर भी साइन कर दिया, इधर भी एग्री कर दिया कंप्यूटर्स के अंदर, हम इधर भी एक्सेप्ट कर दिया, इधर भी एक्सेप्ट कर दिया, इधर भी एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है ना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं, ये बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है। लेकिन फिर हम करें क्यों इतनी बड़ी कमिटमेंट है? अब इतनी बड़ी कमिटमेंट है, इसकी वजह से आप फंस जाते हैं, फंस गए ना भाई आप किसी के साथ एग्रीमेंट के अंदर, तो फिर करें क्यों, ना करें ठीक है ना, तो फिर करते क्यों है, करने वाला क्यों, करवाने वाला तो लेता है बैत, क्योंकि उसके लिए तो बड़ा आसानी हो जाती है ना भाई, काम होना शुरू हो जाता है और एक सिस्टम बन जाता है, लेकिन करने वाला क्यों करे, क्यों अपने आप को फंसाए किसी के साथ?
अपने फायदे के लिए रहते हैं कि क्योंकि वो बैट जो लेने वाला होता है वो उससे आप ही लेके लेते हैं कि अब आपका बुरा नहीं चाहता, तो इसलिए
आपका बुरा नहीं चाहता, ठीक है, और आपको बुरा नहीं चाहता, सही बात है। ये तो आपको एक ट्रस्ट होता है कि हाँ भाई ये जो है ना वो मुझसे जो बैत ले रहे हैं तो ये खैरख्वाही के साथ मेरे फायदे के लिए मुझसे बैत ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन खाली ये तो काफी नहीं है कि आप ही मेरे घर पाए तो इस वजह से मैं उनसे बैत कर लूँ जाकर।
उससे कुछ बदले में ले रहते हैं, कुछ बदले में ले रहते हैं।
उसके बदले में आप कुछ ले रहे होते हैं, ठीक है ना, आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होता है। बैत के बगैर फायदा बहुत थोड़ा सा हो रहा होता है और नुकसान का भी बहुत एहतमाल होता है, ठीक है ना, लेकिन बैत करने के बाद जो है ना वो फायदा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा फायदा बढ़ जाता है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में कि आप जब किसी चीज के लिए कमिट कर लेते हैं ना, आप जब किसी चीज के लिए यकसू हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं, कमिट हो जाते हैं, तो आपका जो फायदा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इंसान की ये फितरत अल्लाह ताला ने बनाई है, इंसान की फितरत बनाई है कि जहां उसको दो पैसे का ज्यादा फायदा नजर आए वो उधर जाना पसंद करता है, ठीक है ना। आपको पता है सीरत की क्लास से याद होगा कि जब मदीना तैयबा से, उस वक्त तो यसरब था, जब सहाबा आए मदीना वाले आए नबी अलैहिस्सलाम से, उन्होंने बैत उकबा थानी करी, तो उस वक्त उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से एक सवाल पूछा था। क्या सवाल था वो, जब वो बैत करने के लिए आए थे नबी अलैहिस्सलाम से बैत, अच्छा कौन खड़े हुए थे नबी अलैहिस्सलाम की साइड पे कि तुम लोग नबी अलैहिस्सलाम से बैत करो, कौन खड़े हुए थे यार,
अच्छा
कौन? अब्बास रजी अल्लाह ताला अन, वो खड़े हुए थे। उन्होंने लोगों को कहा था कि भाई इनसे बैत करो, इनसे बैत करो, ठीक है। तो अब उसके ऊपर उन्होंने सवाल किया कि हम क्यों बैत करें, क्या मिलेगा हमें इस बैत करने से, यानी एक सवाल था। वो तो ऑलरेडी वैसे जहन बना के आए थे कि हमें बैत करना है, लेकिन होता है ना कि आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि मुझे क्या फायदा होगा, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था, जन्नत, राइट, जन्नत मिलेगी तुम्हें इसके ऊपर, दुनियावी फायदा वगैरह जो है ना उसके कोई वादे, तुम्हें जो है वो अरब की हुक्मरानी मिल जाएगी, तुम्हें जो है वो दुनिया की हुक्मरानी मिल जाएगी, तुम्हें जो है वो माल पैसा ये सब मिल जाएगा। भाई मर गए तो क्या कुछ भी नहीं मिलेगा, वापसी के सफर में मर गए तो दुनिया की हुक्मरानी मिलेगी किसी को, बैत करने वाले को, राइट, या अगले जिहाद में मर गए तो मिलेगी कोई दुनिया, कुछ नहीं मिलेगी, जन्नत तो मिल मिल के मिले मिले ही की ना, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत का वादा किया था, तो ये फायदा था ना, और ये कितना बड़ा फायदा था, ठीक है। तो उसके लिए फिर उन्होंने सबने जो है वो बैत कर ली थी कि हम जो है ना वो सब कुछ कुर्बान कर देंगे, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। बहरहाल तो ये बैत के ऊपर पिछली क्लास के अंदर बात हुई थी। अब ये बैत ही इतनी बड़ी चीज थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, ये कोई अल्लाह के नबी तो नहीं थे ना, ये कोई अल्लाह के नबी थे, इनके ऊपर कोई वही आती थी, इनके ऊपर क्या हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे थे, ठीक है, ये ऐसी कोई चीज तो नहीं थे ना, ये हिदायत के दुनिया के अंदर जिसको कहते हैं ना हिदायत का सबब कौन होता है, वो अल्लाह का नबी होता है ना, ठीक है। तो ये अबू बकर सिद्दीक रहा था ना, चलो हिदायत का सबब जो है वो चंद लोगों के लिए बन गए थे, किन के लिए बने थे हिदायत का सबब, अबू बकर सिद्दीक रहा था,
अच्छा
5 अशराए मुबशरा के लिए ये हिदायत का सबब बने थे, और भी चंद सहाबा थे जिनको के ये दीन इस्लाम मिलाने का सबब बने थे, लेकिन बाकी किसी का तो ये सबब नहीं बने थे, बाकी का सबब तो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम बने थे। तो लोगों को जो एक पर्सनल एफिलिएशन थी, जो एक मोहब्बत थी, वो किसके साथ थी, वो तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ थी ना, ठीक है ना, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, नबी अलैहिस्सलाम उनकी हिदायत का सबब बने और उनके जो है वो कामयाबी का सबब बन रहे सब। अब जो है वो अबू बकर सिद्दीक रतान से तो ऐसा कोई मामला नहीं था इन लोगों का, ठीक है ना, हाँ भाई अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे थे, हमारे मुकाबले में सबसे अच्छे थे, ठीक है ना, लेकिन हमारे लिए भाई मैं ये जाती तौर पर इनसे क्या फायदा हो, जाती तौर पर नबी अलैहिस्सलाम के फायदा हो ना, इनसे क्या फायदा हो, ठीक है, तो इस वजह से मैं इनकी बात क्यों मानू, मैं इनकी बात क्यों मानू भाई, मैं नबी की बात मानू, बात समझ में आती है, नबी ने मुझे जहन्नुम से बचाया, मैं मुसलमान हो गया, नबी के नाम मैंने, नबी के हाथ पे कलमा पढ़ा ना, नबी के हाथ पे मैंने बैत करी ना, मुसलमान हो गया, जन्नत मिल गई, ठीक है ना। अब अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, कहते अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, जन्नत मिल गई, साहबी बन गया, रज़ी अल्लाहु अन्हु वरदु अन, कुरान नाजिल हो गया। कुरान नाजिल हो गया था क्या? अभी भी नाजिल होना बाकी था। अबू बकर सिद्दीक के दौर में भी कोई कुरान मजीद नाजिल हुआ है? रज़ी अल्लाहु अन्हु वरदु अन की आयत जो है वो अबू बकर सिद्दीक के खलीफा बनने के बाद नाजिल हुई कि उससे पहले नाजिल हुई? पहले नाजिल हुई ना। तो सहाबा को जन्नत का सर्टिफिकेट मिल चुका है कुरान मजीद के अंदर, ठीक है ना। अब क्या मुसीबत है, अब क्या मसला है मुझे? मैं जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है, अब मैं इनकी क्यों मानूं? ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए।
इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये कि नस्बत इनको हासिल थी तो इसलिए उनकी बात माने, और दूसरी ये
नस्बत सबको आ सकती है, दूसरी
कि
बात होती है।
जो अमीर होता है वो उनके नायब रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पे, तो जो नायब होता है वो जो नायब अभी जो यहाँ पे अमीर है जो पहले अमीर थे, तो अब नहीं
अमीर तो अभी ये बना ही नहीं है ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं क्यों उनको अमीर बनाऊँ अपना भाई। मैं खुद अमीर हूँ। हर सहाबी अमीर है, हमसे पहले ये बात है, अभी इजमा नहीं हुआ, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ मैं पहले ये बात, ठीक है ना भाई। सहाबी सहाबी है, हर सहाबी को नबी अलैहिस्सलाम से जो है वो डायरेक्ट नस्बत हासिल है, ठीक है ना। हर सहाबी जो है वो रूहानी तौर पर अमीर है, वेल्दी है रूहानी तौर पर, ठीक है। हर सहाबी को जन्नत के अंदर सर्टिफिकेट मिल चुका है, रजी अल्लाह वरदान मिल चुका है सर्टिफिकेट, अब क्यों अबू बकर सिद्दीक की बात मानूं? ठीक है, यही आपको बता रहे हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं थी कि अबू बकर सिद्दीक की बात मान करके मैं अपनी जान जोखिम में डाल दूं, ठीक है ना, ये कोई मामूली बात नहीं। यरमकल्ला, मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि जब उन्होंने बैत कर ली ना, जब बैत कर ली, अब उसके बाद अबू बकर सिद्दीक की बात मानना उनके ऊपर वाजिब हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बैत कर ली। अब अबू बकर सिद्दीक उसामा के लश्कर को भेज रहे हैं, सारे के सारे जा रहे हैं, राइट, बड़े सहाबा भी जा रहे हैं, छोटे सहाबा भी जा रहे हैं, दरमियाने सहाबा भी जा रहे हैं, सारे के सारे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? कोई पैसा मिल रहा है उनको? कुछ भी तो नहीं मिल रहा, जन्नत मिल रही है तो जन्नत तो पहले भी मिल रही थी, ठीक है ना। लेकिन अब उन्होंने बैत कर ली है, यानी कहने का मकसद ये है कि बैत करना इज नो जोक। हमारे अकाबरीन के पास जब लोग आते हैं ना बैत कर लें जी, हमें बैत कर लें, ठीक है ना, तो वो उनको बैत नहीं करते, उनको तौबा कलमात पढ़ाते हैं, ये बैत नहीं होता बड़ों के लिए, जी तौबा कलमात पढ़ाते हैं, बैत नहीं करते, तौबा करवाते हैं कि गुनाहों से तौबा कर लो, ईमान की तस्दीक कर लो, ताकि तुम दोबारा से मुसलमान हो जाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह जो है खत्म हो जाए। बैत की थोड़ी करते हैं, बैत तो वो करते हैं चेक करने के बाद, ठीक है, और अच्छी तरह से टेस्ट करने के बाद फिर वो बैत करते हैं। बहरहाल, तो बैत की बात बहुत हो गई, अब हम आगे चलते हैं। जिसका शेख नहीं उसका शेख से बात करेंगे, वो तो शेख का मसला तो उस वक्त आएगा ना जब उनको जन्नत का कोई मसला था, जन्नत तो उनको वाजिब हो चुकी थी, कुरान मजीद में वादा हो चुका था उनके लिए जन्नत का। अच्छा, तो फिर जब ये उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर वापस आ गया 2 महीने के बाद, तो उसके बाद तो फिर अगला मसला शुरू हुआ ना। लेकिन उससे पहले ही एक मसला शुरू हो चुका था, जब ये लश्कर जा चुका था ना मदीना तैयबा से वहां पे रोमन्स के साथ लड़ने के लिए, तो उस वक्त जो है ना वो हुआ ये कि कुछ सहाबा को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रवाना किया था कि भाई तुम जाओ फलाने कबीले की तरफ और वहां पे जाकर के ना ज़कात कलेक्ट करके लेकर आओ, ठीक है। तो ये लोग जब वहां पे पहुंचे ना, तो उन कबीले वालों के जो सरदार थे ना, उन्होंने कहा कि अच्छा, अबू बकर सिद्दीक ने रवाना नहीं किया था, नबी अलैहिस्सलाम ने रवाना किया था कि तुम जाकर के उस कबीले से जकात कलेक्ट करके लाओ, जैसे कि हर साल में जकात फर्ज होती है। जब ये लोग वहां पहुंचे ना, तो उस वक्त खबर पहुंची कि नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। जब ये खबर पहुंची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से चले गए हैं, तो उन कबीले वालों ने कहा कि भाई हमें तो ये हुक्म था कि हम अपनी जकात निकाल करके नबी के हवाले करें, ठीक है ना, अब नबी दुनिया से चले गए तो अब हम किसके हवाले करें? तो हम तुम्हारे हवाले नहीं करते, क्योंकि अब तो नबी तो है ही नहीं दुनिया में, वो तो चले गए। तो उन्होंने कह दिया कि हम तुम्हारे हवाले नहीं करते, हम खुद ही कुछ कर लेंगे, हम जकात निकालेंगे, हम अपने गरीबों को दे देंगे, हम तुम्हारे हवाले नहीं करते। उन साहबा ने कहा नहीं भाई, हमें तो नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा था, हमें तो ये हुक्म है कि हम तुमसे जकात ले करके आए, ठीक ठीक है। और मदीना तैयबा में अब जो है ना नबी अलैहिस्सलाम के खलीफा अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं, उनको ले आकर के देंगे हम? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं देते तुम्हें। ठीक है, तो उस कबीला, अच्छा वो कबीला कौन सा था? वो बनू तमीम का कबीला, बड़ा मशहूर आज भी, ये बड़ा कतर के जो लोग हैं ना, ये कहलाते हैं बनू तमीम वाले लोग हैं, कतर के जो शहजादे हैं सारे। जी
बात
बात पहुंच गई थी नबी अलैहिस्सलाम के इंतकाल की, ठीक है ना। अब वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो बात भी पहुंची गई होगी कि अबू बकर सिद्दीक खलीफा है। बहरहाल तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं भेज रहे। तो उनका एक शख्स था मालिक बिन नुवैरा, ठीक है, वो बड़ा अहम आदमी था, उसने इनकार किया लोगों से ना कि हम नहीं भेज रहे। अब इसके ऊपर जो है वो इख्तलाफ हो गया। तो ये खबर फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तक पहुंची कि भाई इन्होंने भी इनकार कर दिया है, और कुछ और भी कबाइल हैं, बनू कनाना, बनू केनाना, बनू गतफान, बनू करारा, बनू अब्स और ज़ीबान, इन सारे कबीलों ने जो है ना वो कह दिया है कि हम ज़कात नहीं देंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे। ठीक है, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह उन्होंने सहाबा में ऐलान कर दिया कि हम इनके खिलाफ जंग करें। सही है, तो उमर रज़ी अल्लाह जो है ना वो मदीना तैयबा में मौजूद थे। क्यों? इसलिए कि जब उसामा रज़ी अल्लाह का लश्कर जा रहा था, तो अगरचे कि उस लश्कर में ओरिजिनली उमर फारूक रज़ी अल्लाह भी शामिल थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह उन्होंने भेजते भेजते यानी निकलते निकलते उसामा रज़ी अल्लाह से गुजारिश करी थी कि अगर आप इजाजत दें तो मैं उमर को अपने पास रख लूं, क्योंकि मुझे उमर के मशवरे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसामा, आप मीरुल मोमिनीन है, आपको मैं कैसे मना कर सकता हूँ? बहरहाल बिल्कुल, आप उमर रज़ान को अपने पास रखें। तो उमर रज़ान को छोड़ के चले गए थे पूरे लश्कर वाले। तो उमर रज़ान जो है ना वो अबू बकर सिद्दीक रज़ान के पास आए कि आप इन लोगों से कैसे जिहाद करेंगे, कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया है कि मुझे हुक्म दिया गया है कि लोगों से उस वक्त तक किताल करूं जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ना कहें, लेकिन जब वो कलमा पढ़ लें तो फिर उनकी जानें और उनके माल महफूज हो जाएंगे। अब मैं उनकी जान उनसे नहीं ले सकता, उनको उनको मुझे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो मुसलमान हो चुके हैं, कलमा पढ़ लिया उन्होंने, ठीक है ना। तो ये जितने भी लोग हैं ये सारे कलमा पढ़ते हैं, हत्ता कि नमाज भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके जवाब में अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि नमाज और जकात में फर्ज होने के एतबार से कोई फर्क नहीं है, चुनाचे कुरान मजीद में अक्सर मकामात पर नमाज और जकात का जिक्र एक साथ है। इसके अलावा कुरान मजीद में ये भी इरशाद है, बस अगर ये लोग तौबा कर लें और नमाज पढ़ें और जकात अदा करें तो इन्हें कुछ ना कहो। ठीक है, तौबा कर लें यानी शिर्क से तौबा कर लें, नमाज पढ़ें, जकात अदा करें, तो फिर इनको कुछ ना कहो। उसके अलावा एक और भी दलील ये है कि एक कबीला नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आप के पास आया था, गालिबन हवाजन का कबीला था या ताइफ का कोई और कबीला था। तो उन्होंने भी नबी अलैहिस्सलाम से ये कहा था कि हम इस्लाम तो कबूल कर लेंगे लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये बहुत मुश्किल है हमारे ऊपर। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया था कि नमाज के बगैर तो कोई दीन हो ही नहीं सकता, वो तो दीन ही दीन नहीं है जिसके अंदर नमाज ना हो, ठीक है ना। तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि जिस तरह नमाज के बारे में नबी रसूल ने फरमाया कि नमाज के बगैर दीन नहीं है, तो वही हैसियत जो है जकात की भी है। कुरान मजीद में जहां नमाज का हुक्म आता है, 700 मकामात के ऊपर नमाज का हुक्म है ना, तकरीबन उतने ही मकामात के ऊपर जकात का भी हुक्म है। तो उसी के ऊपर कयास करते हुए, उसी के ऊपर एनालॉजी लेते हुए, जकात के साथ भी यही मामला होगा कि अगर कोई जकात का इनकार करेगा तो वो भी दीन पर नहीं है, इसका मतलब है। ठीक है, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने लॉजिक इस्तेमाल करी, अकल इस्तेमाल करी, और इनकी खास बात इन लोगों की यही थी कि इनको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा अकल अता फरमाई थी। ठीक है, तो अब जब ये दलाइल अबू बकर सिद्दीक ताला ने उमर रज़ी ताला के सामने रखे ना, तो उमर रज़ी ताला भी कन्विंस हो गए। वो कौन थे? अबू बकर सिद्दीक ताला के मुशीर थे, एडवाइजर थे, ठीक है ना। तो एडवाइजर को मुतमईन करना ये भी बड़े जो होते हैं उनकी एक अच्छी क्वालिटी होती है कि एडवाइजर को मुतमईन कर लिया। तो उमर रज़ी ताला जो है वो मुतमईन हो गए, और फिर उन्होंने फरमाया कि मैंने देख लिया कि अल्लाह ताला ने ना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का सीना खोल दिया, यानी बिल्कुल उनको शरह सदर अता फरमा दिया इस बात के ऊपर कि इन लोगों से हमने जिहाद करना है। ठीक है, अब जो है ना ये लोग जो है ना, ये जो कबीले वाले थे, ये गतफान और ये बनू करारा वगैरह, ये लोग अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के पास बाकायदा एक वफ की शक्ल में आए, ठीक है ना, और इन्होंने आकर के यही कहा कि भाई हम आपको जकात नहीं देंगे। अबू बकर सिद्दीक ने इनको कहा कि नहीं, जकात नहीं दोगे तो मैं तो तुम्हारे साथ जिहाद करूंगा। ठीक है, तो ये लोग फिर जो है ना गुस्से में ये लोग चले गए, मायूस होकर के और गुस्से में ये लोग चले गए। अबूबकर सिद्दीक रहता जो है वो भाप गए इस बात को कि ये लोग जो यहां से गए हैं ना ये अच्छे इंटेंशंस लेके नहीं गए, ये अब जो है ना हमारे ऊपर अटैक करेंगे। तो इन्होंने सहाबा जो भी मौजूद थोड़े से सहाबा थे मदीना तैयबा के अंदर उनको इकट्ठा किया और उनको फरमाया कि ये जो दो गए हैं ना ये करीब के कबाइल के लोग हैं और ये मदीना तैयबा में देख के गए हैं कि हमारे जो मेजर फाइटिंग फोर्स है वो मौजूद नहीं है मदीना मुनव्वरा के अंदर, तो ये लोग जल्द अटैक करेंगे मदीना तैयबा के ऊपर। ठीक है जी अरफान आप क्या कह रहे हैं?
उनके
अबूबकर सिद्दीक ने उनसे ये नहीं कहा कि तुमने तो मेरे से बात करी है इस वजह से मेरी बात मान, ये तो नहीं कहा उन्होंने, क्या कहा?
हुक्म जता देना तो वो तो
जी अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने ये वाली क्लॉज, इसको कहते हैं क्लॉज इस्तेमाल करना किसी के खिलाफ, राइट, ये वाली क्लॉज इस्तेमाल ही नहीं करी उनके खिलाफ कि तुमने तो मुझसे बात करी थी अब मेरी बात मानो, उन्होंने ये इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने क्या क्लॉज इस्तेमाल करी कि तुमने नबी अलैहिस्सलाम से तो बैत करी थी ना और कुरान जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुआ था और उसके अंदर ये वाले दलाइल मौजूद है, ठीक है ना, तो इस वजह से ना मैंने तुमसे जिहाद कर लिया, अगर तुम, यानी ये नहीं कहा कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे इस वजह से मैं तुमसे जिहाद कर रहा हूँ, उन्होंने कहा तुम अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मान रहे, ठीक है ना, इस वजह से मैं तुमसे जिहाद कर, ठीक है। तो ये लोग मायूस होकर के चले गए, तो अबूबकर सिद्दीक उन्होंने फिर बात को समझ लिया और जो बाकी ईमानदार साहबा मौजूद थे, कुछ थे बड़े बड़े साहबा अभी भी पीछे मौजूद, जुबैर बिन अवाम रहता उनका नाम भी लिखा हुआ है, तलहा बिन अब्दुल्ला और अब्दुल्ला इब्न मसूद रहता अली रहता भी उस वक्त मदीना तैयबा में मौजूद थे। तो अबूबकर सिद्दीक रहता बाकायदा छोटे छोटे जो है ना वो यानी दस्ते बनाए, दस्ते कहते हैं जैसे छोटे छोटे ट्रूप्स बनाए और मदीना तैयबा के एंट्री के जो रास्ते थे वहां पर उनको हिफाजत के लिए मुतयन कर दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था कि इन लोगों ने थोड़े दिन के बाद अटैक कर दिया मदीना तैयबा के ऊपर। तो अबूबकर सिद्दीक को खबर पहुंची तो आप रज़ियल्लाहु जो है ना फिर बाकायदा लश्कर को जो भी मौजूद थे वहां पर उनको लेके गए और इन लोगों के साथ बड़ी फेरस किस्म की फाइटिंग हुई और वो लोग जो है वो दुम दबा के भाग गए सारे के सारे, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद अबूबकर सिद्दीक को ये भी खौफ था कि अभी भी ये लोग जो है ना बाज नहीं आएंगे बल्कि ये फिर से हमला करेंगे, फिर अबूबकर सिद्दीक ने हिफाजत का सारा इंतजाम किया और इतने अरसे में क्या हुआ कि उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो लश्कर था ना वो भी कामयाब होकर के वापस पहुंच गया मदीना तैयबा, वापस पहुंच गया और मुनकरीन ज़कात जो ये लोग थे ना तो ये लोग बुरी तरीके से सप्रेस हो गए और इन्होंने जो है वो मतलब ये सप्रेस हो गए, अभी मामला खत्म नहीं हुआ। तो जब खालिद बिन सॉरी जब उसामा रज़ियल्लाहु का लश्कर वापस आ गया तो अब जो है ना अबूबकर सिद्दीक ने सबको रीग्रुप किया और फिर उस लश्कर के 11 हिस्से बनाए, ठीक है ना, 11 हिस्से बनाए। जी इनमें कोई शहीद हुए थे जिक्र नहीं है कि इनमें कोई सहाबा शहीद हुए थे, जाहिर ऐसा ही लगता है कि बस इन लोगों को मार मार के भगा दिया और ना तो इनकी मरने के लोगों की तादाद लिखी हुई है ना मुसलमानों के मरने की तादाद कोई ऐसी लिखी हुई है, शहादत की तादाद लिखी हुई है। अच्छा बहरहाल तो अब जो है ना बल्कि उसामा रज़ी अल्लाह के लश्कर के आने से पहले ही ये जो मुनकरीन ज़कात वाले लोग थे ना ये इनका मामला खत्म हो गया, सेटल हो गया इनका और ये लोग जो है वो बाकायदा अपनी ज़कात ले ले करके मदीना तैयबा आने लगे। तो ये फितना जो था मुनकरीन ज़कात का एक मेजर फितना, ठीक है, ये फितना जो है ना वो
जी
सप्रेस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उसामा रज़ी अल्लाह के लश्कर वापस आ गया तो अब जो है ना वो नया फितना शुरू हुआ, ठीक है, वो नया फितना क्या होगा?
तो
झूठे नबूवत का, ठीक है, झूठे नबियों ने दावा करना शुरू कर दिया कि हम भी अल्लाह के नबी हैं, ठीक है। तो उनमें जो पहला दावा किया ना जिस शख्स ने उसका नाम था तुलैहा, असदी, तलहा, तलहा है ना, तो तलहा का जो डिमिनेटिव फॉर्म इसमें तस्गीर बनेगी वो बनेगी तुलैहा, ठीक है, जैसे सगीर, सगर की सुगैर, ठीक है, तर्श की कुरैश, उसी तरह तलहा की तुलैहा। तो ये जो तुलैहा था इसने नबूवत का दावा कर दिया और अपने साथ जो है फिर जो अपने हम ख्याल लोग थे उनको मिलाना शुरू कर दिया। ये एक जगह थी बजाखा, वहां पे ठहरा हुआ था, ठीक है। तो अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने, उसामा रज़ी अल्लाह के लश्कर जब वापस आ गया ना, तो उसको फिर 11 टुकड़ों के अंदर तोड़ा और एक टुकड़ा जो है वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन के साथ इसके लिए, इसकी सरकोबी के लिए भेजा, तो लैहा असदी की सरकोबी के लिए, सरकोबी का मतलब इसके सर को कुचलने के लिए, ठीक है। तो जब खालिद बिन वलीद निकलने लगे ना, तो अबूबकर सिद्दीक ने उनसे कहा कि तुम सबसे पहले ना बनू तय की तरफ जाओ, बनू तय के कबीले की तरफ जाओ, ठीक है, और वहां पे जा करके फिर तुम आगे बढ़ना, जब वहां से फारिग हो जाओ फिर उसके बाद आगे बढ़ना। तो खालिद बिन वलीद जो है ना, वो पहले बनू तय के पास गए और बनू तय के एक बहुत मशहूर सहाबी इनके साथ थे, हातिम बिन, हातिम ताई के बेटे, हातिम बिन अदी, अदी बिन हातिम, अदी बिन हातिम, हातिम ताई के बेटे, ठीक है। क्या हो गया,
वाकया बात निकल गई थी।
आदम ताई की वो जो वो है हमदर्द नौनिहाल में जाते थे, हमने भी बहुत पढ़े थे। अच्छा, तो हातिम ताई के बेटे साहब जो थे ना, तो इन्होंने खालिद बिन वलीद से कहा कि खालिद अभी आप ठहर जाइए, लेट मी गो एंड टॉक टू माई ट्राइब, ठीक है। तो ये बनी तय वालों के पास गए और उनसे जो है ना वो बात करनी शुरू करी कि भाई देखो तुम लोग जो है ना ये बाद आ जाओ और बनो ये जो तुलैहा असदी है इसका साथ तुम छोड़ दो, वरना जो है ना खालिद आ रहे हैं तुमसे लड़ने के लिए, और खालिद जो है ना वो ऐसे जंगजू हैं कि उन जैसा कोई जंगजू दूसरा मौजूद नहीं है, तो तुम उनसे लड़ाई करने की गलती मत करना। पहले तो वो लोग हंसना शुरू हो गए, किताब में ये लिखा है कि पहले तो उन्होंने हंसना फंसना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन जब इन्होंने और डराया ना तो फिर वो बाज आ गए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हमें थोड़ा सा टाइम दें, अभी अटैक ना करें, हमें थोड़ा सा टाइम दें, हमारे कुछ साथी जो है ना वो तुलैहा के पास गए हुए हैं नेगोशिएशंस करने के लिए, हम उनको वापस बुला लेते, ठीक है, यानी ये बात मान गए अपने बड़े जो थे ना उदी बिन हातिम के। तो इन्होंने फिर अपने साथियों को वापस बुला लिया और फिर सारे के सारे बाकायदा इनके पास आए, खालिद बिन वलीद था उनके पास, और इन्होंने जो है ना वो इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि जब ये खत में ये झूठे नबी के साथ हो गए थे तो इसका मतलब क्या था कि ये काफिर हो गए। कल क्या बात हो रही थी, मुर्तद हो गए, ठीक है ना, तो जब मुर्तद हो गए तो अब जो है ये इस्लाम के अंदर वापस आ गए, तो इसको फिर क्या कहेंगे, इन्होंने फिर से इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से एक और कबीला भी था, तो उसके भी 1,000 लोग हैं वो आए और उन्होंने आकर के इस्लाम कबूल कर लिया। अब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो बजाखा की जगह की तरफ बढ़े, ठीक है, बजाखा जहां पर तुलैहा असदी ने अपना स्टेशन बनाया हुआ था, वहां पे पहुंच करके मुसलमानों की और काफिरों की, इनकी जिन्होंने झूठे नबी का साथ देना शुरू कर दिया था, इनकी जंग हुई, और इस जंग के अंदर एक कबीला था फजारी, फजारा कबीला, तो उसका जो सरदार था ना उयैना बिन मुहसिन फजारी, इसने जो है वो साथ दिया उसका झूठे नबी का, तुलैहा असदी का साथ दिया, ठीक है। ये क्या नाम था इसका, उयैना बिन मुहसिन फजारी, ये उसके ऊपर ईमान ला चुका था झूठे नबी के ऊपर, ठीक है, और ये बिलीव करता था कि हाँ वाकई ये अल्लाह का नबी है। तो जब जंग शुरू हुई तो थोड़ी देर में मुसलमानों का जब अच्छा गलबा होने लगा ना, तो ये अपने नबी के पास गया, दूसरा झूठा नबी था, और उसके खेमे में गया और जाके कहता है कि तुम्हारे पास कोई वही आई है, तो कोई वही आई, हमें क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं नहीं अभी कोई वही नहीं है, जाओ जाके दोबारा लड़ो, ठीक है, फिर दोबारा चला गया लड़ने के लिए उयैना बिन फजारी। फिर थोड़ी देर लड़ने के बाद फिर वो खेमे के अंदर आया, हाँ भाई जिब्रील आए हैं तुम्हारे पास, कुछ बताया जिब्रील ने क्या करना चाहिए, नहीं 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 अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, वापस जाओ, वापस जाओ, दोबारा जाकर के लड़ो। तो वो दोबारा चला चला गया लड़ने के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद जो है ना वो जब तीसरी दफा आया ना कि जिब्रील आए, वही आई तुम्हारे ऊपर, तो इसने कहा कि हाँ आए थे जिब्रील मेरे ऊपर, ठीक है। मैंने कहा क्या कहा जिब्रील ने तुम्हें आकर के? तो उसने कहा कि जिब्रील ने कहा है कि ये लड़ाई जो है ना, ये तुम्हारे लिए चक्की का पार्ट साबित होगी, यानी इसके अंदर जो है ना वो तुम्हें आजमाया जाएगा, और यह ना के लिए ये एक ऐसा वाकया होगा जिसको वो कभी भूल नहीं सकेगा। यानी आए बाएं शाएं इधर उधर की जो है ना उसने आए बाएं शाएं कर दी। तो इसकी बात सुन करके वो यह ना जो है ना वो भाग गया कि यार ये झूठा है, इसके ऊपर कोई वही सही नहीं आती, पक्का जो है ना ये 420 420 ही कर रहे हैं हमारे साथ। तो ये ना वहां से निकला और इसने जा करके अपने जो इसके खबीरे के लोग थे जो लड़ाई कर रहे थे उनसे कहा कि तो लहर झूठा बंदा है, तो मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग भी भाग गए यहाँ से, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे जो है वो भाग गए उधर से, और ये जो तुलैहा था ये भी भाग गया, और भाग करके ठीक वहां पे शाम जा करके पहुंचा, ठीक है। और शाम में जा करके फिर ये रहना शुरू हो गया, लेकिन बिल आखिर ना बाद में जब उस तक खबर पहुंची कि जो उसके जैसे और उल्टे सीधे लोग थे जिन्होंने इसी तरह के है ना मुर्तद हो गए थे, तो वो सारे के सारे मुसलमान हो गए, तो तुलैहा भी मुसलमान, यानी इसने झूठी नबूवत का दावा भी किया लेकिन बिल आखिर जो है ये आकर के मुसलमान हो गया। और उमर फारूक रज़ी के जमाने में इसने बाकायदा उमर फारूक रज़ी से आकर के बैत भी करी, ठीक है। तो ये पहला झूठा नबी था कि जिसके साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी की फोर्सेस को लड़ना पड़ा था, लेकिन ये इस तरीके से मामला खत्म हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो एक औरत थी उम्मे जमल का लिखा हुआ है कि उस औरत ने भी जो है ना इसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया था। उसकी माँ को मुसलमानों ने शहीद कर दिया, मुसलमानों ने कत्ल कर दिया था किसी लड़ाई के अंदर, ठीक है, हजरत सरसम के जमाने में। तो उम्मे जमल ने अपनी माँ का बदला लेने के लिए अपने गिर्द कुछ फोर्सेज इकट्ठी इकट्ठी करी। ये पहली औरत है जिसका के इन फितनों के अंदर नाम आता, उम्मे जमल, ठीक है। इसने लोगों को इकट्ठा किया और खालिद बिन रुय्यातान की लश्कर से जो है वो लड़ाई करने की कोशिश करी, लेकिन खालिद बिन रुय्यातान जो है वो आए और उन्होंने फिर जब उसके ऊपर अटैक किया ना, तो इस औरत को कत्ल कर दिया गया, ठीक है। और उसके जितने प्रोटेक्टर्स थे, इसके जितने भी मुहाफिज इसके साथ थे, वो सारे के सारे मार दिए गए, ठीक है। तो ये वाला फितना भी खत्म हुआ। जी अफान, ये मुसलमानों की आजाद करदा गुलाम थी। अच्छा, हो गया, उम्मे जमल
ये अच्छा
अच्छा ठीक, मैंने पढ़ा नहीं है इसको। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद जो है वो जो अगला फितना आया झूठे नबी का, वो एक औरत की शक्ल में था। उस औरत का नाम था सजाह बिनते हारिस जी। हाँ,
लड़कियों
अगर लड़की कोई इस किस्म की हरकत करेगी तो उससे भी डरना पड़ेगा ना। तो उम्मे जमल भी औरत थी, उसने भी ये काम किया था। तो उसके बाद फिर एक और औरत थी सजा, ये थी बनू तमीम से। तो बनू तमीम का जो एक आदमी अभी पीछे जिसको जिक्र हुआ था, मालिक बिन नुबैरा, ठीक है, जिसने के जकात देने से इनकार किया था, वो भी आकर के शुजाह बिनते हारिस के साथ मिल गया, ठीक है। तो अब सजाह बिनते हारिस, सजाह बिनते हारिस, ठीक है, इसने नबूवत का दावा कर दिया। इसके साथ जो है वो लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और इसके पास फोर्सेस जो है ना फिर जमा होनी शुरू हो गई, ठीक है। इसने इतनी फोर्सेस जमा कर ली कि इसका इरादा ये बन रहा था कि मदीना तैयबा के ऊपर अटैक कर अपनी फोर्सेस के साथ, ठीक है। लेकिन मालिक बिन नुवैरा ने इसको मशवरा दिया कि नहीं, अभी हमें ना मदीना के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, हमें कुछ और फोर्सेस भी इकट्ठी करने चाहिए, कुछ और कबाइल को भी अपने साथ जमा करना चाहिए। तो इसको फिर किसी ने बताया कि यमामा के इलाके में जो मुसैलमा कज़ाब है उसने भी नबूवत का दावा कर दिया है, ठीक है। तो सजाह बिनते हारिस जो है ये यमामा पहुंच गए मुसैलमा कज़ाब के पास, और फिर मुसैलमा कज़ाब के साथ किताबों में लिखा हुआ है कि इसकी बड़ी जो है ना वो डिस्कशंस हुई, नेगोशिएशंस हुई, शेरो शायरी के तबादले हुए वगैरह वगैरह, और बिल आखिर जो है ना वो सजाह बिनते हारिस ने मुसैलमा कज़ाब से शादी कर, ठीक है ना। और ये जो है ना फिर एक फोर्स बन गए, और एक बहुत बड़ी फोर्स बन गए। यमामा कबीला जो रियाज में रहने वाले हैं उनको पता होगा, अब तक तो सब लोगों को भी पता चल चुका है कि ये यहीं पे जो दिरिया का इलाका है ना, ये पूरा का पूरा ये यमामा का इलाका ही होता था पहले, ठीक है, जिसको कि दिरिया कहते हैं। बनू हनीफा का कबीला यहाँ पे रहता था। तो असल में कबीले का नाम क्या था? बनू हनीफा। ठीक है, वादी हनीफा के नाम से ये जगह अभी भी मशहूर है। उसका एक इलाका है जिसको के दरिया कहते हैं, बाकी जुबैल और कौन कौन से इलाके, जुबैला, तो जुबैला है और भी एक दो मशहूर बड़े इलाके हैं वहां पे, उयैना वगैरह। ठीक है, तो ये जो ट्राइब था ना, ये बहुत बड़ा ट्राइब था, बहुत बड़ा कबीला था ये बनू हनीफा का कबीला, और ये सारे के सारे यहीं पे रहते थे। तो मुसैलमा कज़ाब की पावर्स जो है ना, वो और ज्यादा बढ़ गई, सजा बिनत हारिस की फोर्सेस भी आकर के इसके साथ मिल गई। वैसे मुसैलमा के साथ तो अभी वाकई आगे चलेगा, सजा बिनत हारिस के साथ अजीब मामला हुआ कि थोड़े दिन बाद जो है ना, वो इसको कुछ ऐसे कुछ पर्सनल मैटर्स ऐसे पड़ गए इसके साथ कि ये वापस चली गई, अपने कबीले के अंदर वापस चली गई, और फिर जो है ना वो दोबारा मुसैलमा कज़ाब के पास ये आई ही नहीं। और किताबों में ये लिखा हुआ है कि ये फिर मुसलमान हो गए, यानी इसने तौबा कर ली, इर्तदाद से तौबा कर ली और फिर ये मुसलमान हो गए। अब यहाँ पर मुसैलमा कज़ाब के साथ क्या मामला हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि अब तुम यमामा जा करके मुसैलमा का मुकाबला करो। ठीक है, तो खालिद बिन वलीद रतान जो है वो रवाना हुए, और दूसरी तरफ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी एक लश्कर देकर के यमामा की तरफ रवाना किया। अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे? नबी अलैहि सलाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल के बेटे। ठीक है, सजा वाज द वाइफ ऑफ मुसैलमा कज़ाब, ही हैड बिकम द वाइफ ऑफ मुसैलमा कज़ाब एंड देन शी लेटर अबैंडन्ड हिम एंड वेंट बैक एंड बिकेम मुस्लिम अगेन। ठीक है, अच्छा, तो अकरमा रतान को अबू बकर सिद्दीक रतान उन्होंने एक और छोटी सी आर्मी दे करके यमामा रवाना किया, और अकरमा रतान को हुक्म दिया कि जब तक तुम्हें पीछे से री इन्फोर्समेंट्स ना आ जाए ना, तुम्हें कुमक ना मिल जाए, मदद ना मिल जाए, नेक्स्ट लश्कर की मदद ना मिल जाए, उस वक्त तक तुम उनसे लड़ना नहीं। ठीक है, लश्कर इन क्यों इतने तीन इधर से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को रवाना कर रहे हैं, इधर से जो है वो अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु को रवाना कर रहे हैं, और फिर एक तीसरी फोर्स भी रवाना कर रहे हैं, वो क्यों? वजह साफ जाहिर है कि
40,000 से ऊपर जंग
मुसैलमा कज़ाब का जो जो ट्राइब थी ट्राइब था वो बहुत बड़ा ट्राइब था, और इवन दूसरे ट्राइब्स भी आकर के इसके साथ मिल गए थे। तो ये एक बहुत ही ना, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में फॉर्मिडेबल फोर्स बन गई थी, यानी उसको शिकस्त देना जो है आसान काम नहीं लग रहा था, और ये बड़े वो थे खून खौर किस्म के लोग थे। ठीक है, जैसे कि आजकल आपको कभी वास्ता पड़ा हो, अगर अरब के जो बद्दू होते हैं ना, खुसूसन इधर के जहाँ पे हम रहते हैं नजद, तो वो बड़े हार्ड किस्म के लोग होते हैं, लूट
लूट
मार भी बहुत करते हैं, और यानी अब तो खैर लूट मार नहीं करते, अब तो बाकायदा सिस्टम में आ गए, लेकिन सख्त मिजाज इनकी ऐसी है कि ये किसी को खातिर नहीं आते, बात भी ऐसे करेंगे, गाड़ी भी ऐसे चलाएंगे जैसे घोड़ा चला रहे हूँ। ठीक है, इधर मारा उधर मारा, खुद मर गए, दूसरे को मार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको, फिर मारते हैं दोबारा जा करके, फिर मरते हैं दोबारा जा करके। ठीक है, तो ये सारे यही लोग हैं इधर के ना, नजद के, ये बनू हनीफा टाइप के जो लोग हैं सारे, बहुत ज्यादा सख्त जान है भाई, ऊँटों के साथ रहते हैं, सारा वक्त ऊँटों के साथ रहते हैं, और रेगिस्तान की सख्ती के अंदर ये रहते हैं। रेगिस्तान के अंदर रहना कोई मामूली बात नहीं होती, और ऊंट जैसे जानवर होता है ना, ये भी बहुत ज्यादा टफ किस्म का जानवर होता है, और सोहबत का और माहौल का इंसान की तबीयत के ऊपर असर पड़ रहा होता है। तो इस वजह से डेजर्ट में रहने वाले और ऊंटों के साथ रहने वाले जो है ना, वो वैसे ही बहुत ज्यादा हार्ड किस्म के लोग बन जाते हैं। क्या बाकी अरब ऊंटों के साथ ही रहते थे? मक्का मुकरमा वाले वो ऊंटों के साथ ही रहते थे, मदीना तैयबा वाले ऊंटों के साथ ही।
वो माहौल और कबीले भी उनके अलग अलग हैं, तो उसके अलावा एक तरह तजारती मरकज की राह है उस मूवी, और हरियाली भी कोई फर्क नहीं होता मदीने में, फर्क मक्का में।
वैसे तो अंकल की क्लास नहीं, अभी तो बच्चों से पहले पूछने में अंकल से कुछ खास सवाल करते हैं जी, बच्चे बताएं पहले जवाब दे दें। और भी
काफी जानवरों की भी सोहबत में जाते थे दोनों।
हाँ, जो बाकी इलाकों के लोग थे ना, वो दूसरे जानवरों के साथ भी रहते थे, उनके पास खच्चर भी होते थे, उनके पास गधे भी होते थे, उनके पास बकरियां भी बहुत होती थी, उनके पास जो है वो घोड़े भी होते थे, यानी वो एक मिक्स किस्म के माहौल में रहते थे, सिर्फ ऊंटों का मामला नहीं होता था। जबकि जो ये जो लोग हैं ना, जो कि बिल्कुल यानी लकोदक सहरा के अंदर, या अल्लाह, ठीक है, तो इनका वास्ता जो है वो दूसरे जानवरों से बहुत कम, उनका भी वास्ता यही नहीं कि बकरियां यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे घोड़े होते नहीं, ऐसा नहीं है, घोड़े बकरियां इधर भी होते थे, लेकिन वही रिलेटिवली स्पीकिंग, इनके पास ऊंटों का मामला बहुत ज्यादा होता था और दूसरे जानवरों का मामला बहुत कम होता था। जो मेजोरिटी होती है ना, उसका असर इंसान के ऊपर होता है, माइनॉरिटी का असर नहीं होता। जी
किस
किस इलाके में रहते हैं? बर्फीले इलाके में रहते हैं। वैसे तो हमारा वास्ता नहीं पड़ा आइस डेजर्ट वालों के साथ, लेकिन साइंस क्लास की बरकत से इतना जरूर बता सकते हैं कि जो आइस लैंड में रहते हैं ना, आइस वाले लैंड्स में रहते हैं, तो वो भी एक्चुअली क्या है, वो भी डेजर्ट्स ही में आता है, उनको आइस डेजर्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो एन मुमकिन है कि वहां वाले लोग भी ऐसे ही हों, अगर से वहां पे कैमल्स नहीं होते, ठीक है, तो कैमल का असर तो नहीं पड़ता होगा, लेकिन आइस जो है ना वो भी इंतहाई हार्ड चीज होती है, और वहां पे रहना भी जो है ना वो उतना ही हार्ड, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा हार्ड होता है जितना कि डेजर्ट में रहना, ठीक है, तो हो सकता है उनकी तबीयत भी नदियों की जैसी होती है। जी है सी लायंस। हाँ सी लायंस होते होंगे ऐसे। वेयर इज प्लेस यू जस्ट सेड वेयर सख्त पीपल लिव, इंग्लू, नजद, ठीक है, नजद कहा था, और सहरा कहा था, यानी डेजर्ट, नजद के जो डेजर्ट है। अच्छा, तो अकरमा रजान को यहाँ पे भेजा, अकरमा रजान जो है वो थे जरा जवान खून, और वो भी जो है ना वो खालिद बिन वलीद रजान के लेवल के ही तकरीबन फाइटर थे, ठीक है, और जरा मुसलमान भी बहुत पहले नहीं हुए थे, वो भी बस अभी रिसेंटली ही मुसलमान हुए थे ना, फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए थे। तो उनसे जो है ना फिर वो एक गलती हो गई कि अमीर का हुक्म जो है ना उन्होंने नहीं माना, और वो आते के साथ ही जो है ना वो लड़ पड़े यमामा वालों के साथ, मुसलमान कजाब की फोर्स के साथ लड़े। तो वैसे तो मुसलमान कम हो लेकिन बड़े के ऊपर गालिब आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मसला क्या हो गया था, यहाँ पे मसला ये हो गया था कि ऐसे ही नहीं, मुसलमान होना काफी नहीं होता, बल्कि अमीर की अतार, अल्लाह का हुक्म भी मानना जरूरी होता है ना, भाई मुसलमान हो तो हम भी जैसे लोग हैं, हमारा कौन सी मदद मिलती है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूली व उलिल अम्र मिनकुम, ये तीनों अल्लाह ताला के हुक्म है ना, तो उलिल अम्र का हुक्म जो है वो फिर उनसे रह गया, गलती हो गई, इंसान से गलती हो जाती है, तो उनको जो है ना वो शिकस्त हो गई, यानी उनको बेसिकली रिट्रीट करना पड़ा, फ्ली करना पड़ा, मुसैलमा कज़ाब की फोर्सेज जो है वो गालिब आ गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह को जब ये खबर मिली तो बहुत नाराज हुए, अकरमा रज़ी अल्लाह तआला उनके ऊपर नाराज हुए, लेकिन बहरहाल होता रहता है सिरा का मामला। तो उसके उनके पीछे जो है ना वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह उन्होंने शुरहबील बिन हसना, शुरहबील बिन हसन रज़ी अल्लाह की क़यादत में एक और लश्कर रवाना किया था। असल में जब इन दोनों ने मिल जाना था ना, तब मिल करके अटैक करना था, लेकिन उन्होंने शुरहबील रज़ी का इंतजार ही नहीं किया। बहरहाल शुरहबील रज़ी जो है वो जब वहां पे पहुंचे तो फिर उतनी देर में है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर भी वहां पे पहुंच गया, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि वो जो 11 टुकड़े बनाए थे ना, उनमें से कम 3 टुकड़े जो है वहां पे पहुंच गए मुसैलमा कज़ाब से लड़ने के लिए। अब इनके अंदर आपको, आपने यकीनन सुना होगा कि ये जो मुसलमानों का लश्कर था, इसके अंदर बड़े बड़े मुहाजरीन और अंसार सहाबा थे, और इनके अंदर जो है ना वो कई 100 हुफाज़े कुरान मजीद थी इनके अंदर शामिल, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े सहाबा थे जैसे कि हजरत जैद बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला के भाई, ठीक है, ये उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला से पहले मुसलमान हो गए थे, और उमर रजी अल्लाह तआला से पहले इनको शहादत भी नसीब हो गई थी। जब ये शहीद हुए तो उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि जैद ना मुझसे दोनों चीजों में बाजी ले गया, मुसलमान होने में भी बाजी ले गया और शहीद होने में मुझसे बाजी ले गया, ठीक है। तो जैद अतान भी थे, ये जैद बिन खत्ताब, और साबित बिन कैस रजी अतान थे, हजरत अबू हुजैफा रजी अल्लाह तआला, ठीक है, जो कि नबी अलैहिस्सलाम के खुदाम में होते थे, और इनके एक गुलाम थे हजरत सालिम रजी अल्लाह तआला, ठीक है, जो कि सालिम मौला अबू हुजैफा के नाम से मशहूर है, सालिम मौला अबू हुजैफा, मौला का लफ्ज जो है वो आका के लिए भी इस्तेमाल होता है और गुलाम के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है वो सहाबा मौजूद थे। अब जो है ना वो अकरमा का वो जो सॉरी मुसैलमा का लश्कर था वो कोई 40,000 कुछ जगहों पे तो एक्चुअली 70,000 लिखा हुआ है, 70,000 उसके लोग थे, कहीं पे 40,000 लिखा हुआ है। तो उन्होंने जो है वो अपना डेरा डाला। अच्छा, हम जब यहाँ पे देखने के लिए गए थे ना, अपने एक दोस्त जो के बहुत पहले हजरत जी के साथ इन्होंने इस जगह का विजिट किया था, तो उन्होंने हमें पूरा बताया था कि ये पहाड़ी है कि जिसके ऊपर हजरत खालिद बिन वलीद अचानक का लश्कर आया था, और यहाँ पे इस पहाड़ी के ऊपर वो स्टेशन हुआ था, ठीक है। और जो जहाँ पे मुसैलमा कजाब का लश्कर था ना, वो इस तरफ था, ठीक है। तो फिर यहाँ से जो है उन्होंने जब अटैक किया था, तो इस जगह पे जंग हुई थी, जो कि वहां पे वादी दम के नाम से मशहूर है। बहरहाल, कहीं पे 40,000 लिखी हुई है, कहीं पे 60,000 लिखी हुई है, और मुसलमानों की तादाद कितनी थी, तकरीबन 30,000 मुसलमान भी हो गए थे, ठीक है। अब जो है ना, वो खालिद बिन वलीद रज़दान जो है वो इस लश्कर के सिपे सालार बने, और उन्होंने फिर सुबह के वक्त अपने लश्कर को तरतीब दिया, मैमना मैसरा, मैमना कहते हैं राइट साइड को, मैसरा कहते हैं लेफ्ट साइड को, और जो दरमियान का लश्कर होता है, इस तरीके से पूरा उन्होंने तरतीब दिया और लड़ाई शुरू करने लगे थे, ठीक है। दोनों लश्कर एक दूसरे की तरफ बढ़े। किसी ने हजरत सालिम रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि भाई, आप तो हाफिज कुरान हैं, अगर आप शहीद हो गए ना, तो फिर तो कुरान का एक हाफिज शहीद हो जाएगा, और ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है ना, प्लीज जरा अपनी हिफाजत कीजिएगा। तो उन्होंने सुन करके कहा कि अगर मैं इस बात का अंदेशा करूं कि अगर मैं शहीद हो गया तो कुरान का नुकसान हो जाएगा, तो मुझसे बुरा हाफिज कुरान और कोई नहीं होगा, ठीक है ना, मुझसे बुरा हाफिज कुरान और कोई नहीं होगा। इस जुमले की जरा तशरी तो फरमाए हुफाज़ कुरान। तशरी, सवाल जवाब की बात नहीं करते, आपने सबसे पहले
वो
बताया।
कहना चाह रहे थे कि मैं अगर कम हो गया तो सही, और पैसे की जिम्मेदारी अल्लाह के आदमी के लिए, मुझे अंदेशा होने नहीं चाहिए कि मेरे मरने से।
कुरान की जिम्मेदारी, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने लिया, तो ये क्या बात हुई कि मैं अगर चला गया तो कुरान की हिफाजत में कोई कमी आ जाएगी। और कोई जवाब?
जवाब ये कि वो कह रहे थे कि वो हाफिज है कुरान, पहली बात। दूसरा ये वो कुरान के अंदर ही अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने, तो अब जब कुरान मतलब हाफिज कुरान, मैं कुरान की बड़ी यकीन नहीं करूँ कि उसके बड़ा होती है।
अगर मैं कुरान को यकीन न करूं तो मुझसे बुरा हाफिज कौन होगा, ठीक है। इसी को अगर थोड़े और अच्छे अंदाज में आप एक्सप्लेन कर सकें, जब आप लोग हाफिज बनते हैं तो हजरत जी और बड़े जो है ना, वो एक दुआ मांगते हैं, वो दुआ
बिल्कुल
क्या होती है,
अमल
कि अल्लाह
कुरान
आपको, इट मीन्स दैट कुरान डज नॉट डिपेंड ऑन मी। इनका भी वही जवाब है यहाँ पे, कि उसमें भी आप लोग दे चुके हैं, ठीक है, कि ए अल्लाह आपने इन बच्चों को अल्फाज कुरान का हाफिज बना दिया, अब इनको अहकामात कुरान का हाफिज भी बना दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा, भाई मैं तो कुरान मजीद के अल्फाज का हाफिज हूं, लेकिन असल कुरान मजीद की हिफाजत तो कुरान मजीद के अहकामात की हिफाजत है ना। तो अगर मैं कुरान मजीद के हुक्म की हिफाजत नहीं कर रहा और जान बचा करके जो है ना वो छुप रहा हूं, तो फिर मुझसे बुरा हाफिज कुरान, यानी ये कौन सी हिफाजत हुई कि बस जो है वो अपने अल्फाज की हिफाजत कर ली और आप अपने आप को हाफिज कुरान समझ रहे हैं, राइट। और अल्लाह के हुक्म की हिफाजत जो कि कुरान मजीद के अंदर है, उसकी हिफाजत से आप जो है वो उसको अवॉइड कर रहे हैं, उससे पीछे हट रहे हैं, तो ये तो बहुत बुरा हाफिज कुरान, ठीक है। तो सारे हुफाज कुरान या जो हिफ्ज कर रहे हैं वो इस बात को याद रखें कि अगर आपने कुरान मजीद के हुक्मों की हिफाजत नहीं करी ना, तो फिर आप क्या कहलाएंगे, एक बुरे हाफिज कुरान कहलाएंगे, ठीक है ना, एक बुरे हाफिज कुरान कहलाएंगे, एक अच्छे हाफिज कुरान नहीं कहलाएंगे, अगर आप कुरान मजीद के हुक्मों की हिफाजत नहीं कर रहे, हजरत सालिम रज़ी अल्लाह के कौल को याद रखते हुए। तो उन्होंने माशाल्लाह सारे हुफाज के लिए जो है ना वो एक एक प्रिंसिपल सामने रख दिया, ठीक है। बहरहाल, तो लड़ाई शुरू होने से पहले वही हुआ, वो जो ड्यूओ होता था कि उधर से एक बंदा आया, उसका नाम था रजाल या रिजाल, कोई ऐसा नाम था अजीब सा, तो उसने जो है ना वो एक बड़ी झूठी खबर फैला दी थी कि मुसैलमा कज़ाब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत में शामिल कर लिया। वही बंदा जो है वो सबसे पहले सामने डरने को, कोई है जो मेरा मुकाबला करे, तो इधर से जैद बिन खत्ताब रहता ना उसके मुकाबले के लिए आगे गए, और उन्होंने उसको एक ही वार के अंदर जहन्नुम वासल कर दिया। और उसके बाद फिर जंग शुरू हो गई, और खूब जंग हुई, बस ये खत्म करके ना आज की क्लास खत्म करते हैं कि इतनी जंग हुई कि इतनी शदीद जंग जो है ना, वो सहाबा फरमाते हैं हमने इससे पहले कभी लड़ी ही नहीं। ठीक है ना, एक वादी सी है, आप अभी भी जाकर के वहां पे देख सकते हैं जो करीब रहते हैं, कि बस थोड़ा सा वादी, बहुत कोई बड़े बड़े पहाड़ नहीं है, छोटे छोटे से जैसे हिल टॉप्स हैं, उनके दरमियान जो है ना थोड़ी सी गहराई का एरिया है, और वो एक तरह से जैसे एक एक ऐसे चलती है वादी, ऐसे करके यूं करके चलती है। ठीक है, जैसे कोई गोया के एक एक उसके अंदर पानी बहता हो, जैसे कि उसके अंदर कोई दरिया बहता हो उसके अंदर। ठीक है, वहां पे सारी की सारी लड़ाई हो रही थी। तो इसके अंदर जो है वो बहुत सारे काफिरों को भी मारा गया, लेकिन जो बड़े बड़े सहाबा थे, अबू हुजैफा रज़ियल्लाहु शहीद हो गए, उनके जो मौला सालिम रज़ियल्लाहु अन्हु थे गुलाम उनके, वो भी शहीद हो गए, जैद बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हो गए, और भी बड़े बड़े सहाबा जो है ना वो शहीद हो गए, और बिल आखिर जो है वो मुसैलमा का जो लश्कर था ना उसका पैर उखड़ना शुरू हुआ। शुरू में तो वो बड़े गालिब रहे, खूब जो है वो बराबर बराबर की लड़ाई हुई, लेकिन बिल आखिर दे स्टार्टेड रिट्रीटिंग। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की भी स्ट्रैटेजी, वो भी फुल अपनी स्ट्रैटेजीज प्ले कर रहे थे। पहले तो उन्होंने पूरे लश्कर को लड़ाया, फिर उसके बाद कहा कि अब जो है ना वो तुम छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाओ, फिर ग्रुप्स जो है वो अपने अलग अलग तौर पे जो है वो दुश्मन से लड़े। तो स्ट्रैटेजी का भी बड़ा फायदा हुआ, और वो पीछे हटने लगे, पीछे हटने लगे, हद्दा के ऐसा लग रहा था कि अब वो भाग जाएंगे। ठीक है, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ललकारा कि अब जो है ना इनको मारो, खत्म करो, और बस ये अब उखड़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो लोग जो है ना, जब उन्होंने अपने आप को रिट्रीट करना शुरू किया ना, तो उसी गोया के जो वादी सी जगह है, वो वैली टाइप की छोटी सी जगह है, तो वहीं पर एक था बाग, गार्डन। लेकिन वो गार्डन जो था ना, वो ऐसा था कि उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी फसीलें थी, बड़ी बड़ी दीवारें थी, तो वो गोया के एक फोर्ट्रेस नुमा गार्डन था, एक किला नुमा बाग था वो। ठीक है, मुसैलमा कज़ाब की ये कौम का ही वो बाग था, तो उसने जो है ना वो उसका नाम रखा हुआ था मुसैलमा कज़ाब ने हदीकतुर्रहमान, क्योंकि वो अपने आप को कहता था कि मैं ये क्या कहते हैं यमामा का रहमान हूं मैं। ठीक है ना, हालांकि रहमान का जो लफ्ज है वो किसी मखलूक के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये सिर्फ अल्लाह ताला की सिफत है। रहीम तो आप कह सकते हैं दूसरों को, रहमान किसी को नहीं कह सकते, लेकिन ये तो था ही बदबख्त, तो इसने जो है वो अपने आप को रहमान कहना भी शुरू कर दिया, लेकिन यमामा का रहमान कहता था। तो इस बाग का नाम इसने रखा हुआ था रहमान का बाग। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जितने भी काफिर बच गए थे ना, वो भी अभी कई 100 या 1000 से ज्यादा होंगे, ये सारे के सारे जो है ना वो उस बाग के अंदर दाखिल हुए भाग करके, और इन्होंने जो है वो उसका जो जो गेट था उसको बंद कर दिया। ठीक है ना, और वो इतना ऊंचा और इतना स्ट्रांग था कि अब मुसलमान, उन लोगों के पास कोई वो तो थे नहीं, कैटेपोल्ट जिसको मिंचिनीर कहते हैं, इस तरह की कोई चीज थी नहीं, अब कैसे इसको तोड़े, कैसे इसके अंदर जाए, ये मुमकिन नहीं नजर आ रहा था। अब ये लोग बाहर बैठ गए, वो लोग सारे के सारे अंदर अब रेस्ट करना शुरू हो गए वो लोग। अब इतना नुकसान ऑलरेडी हो चुका था, और इतनी फाइट जो है वो आगे बढ़ चुकी थी, और वापस जाना जो था ना, ये ऐसा था कि जैसे कि आपने लोगों को छोड़ दिया, फितने को छोड़ दिया, मदीना तैयबा तो 800 किलोमीटर दूर है ना यहाँ से, उस जगह से 800 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो अब बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्या करें भाई, इन लोगों को कैसे निकालें, कैसे सब थके हुए भी हैं। बहरहाल क्या हुआ, एक ऐसा वाकया हुआ कि जो कि तारीख इंसानी के अंदर ना कभी हुआ ना कभी दोबारा हो सकेगा, शायद कभी भी दोबारा भी इसका आप मुमकिन नहीं समझ सकते इसको कि ऐसा दोबारा हो सकता है। एक सहाबी बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई अब एक ही हल है, वो ये है कि तुम सब के सब जो है ना वो मुझे उछालो, पकड़ करके ऐसे उछालो कि मैं इस किले की ऊंची दीवारों से होता हुआ अंदर जाकर के गिर, ठीक है ना, मैं अंदर जाऊंगा, फिर अंदर जाकर के मैं किले का दरवाजा खोल दूंगा, तुम लोग अंदर आ जाओ। ठीक है, सबने कहा ये तो खुदकुशी करना होगा, ये कैसे हो सकता है, तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं, अंदर जाओगे तो सारे के सारे काफिर अंदर मौजूद हैं, सवारी पर। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं होता, कोई फिक्र ना करो, चिंता ना करो, चिंता ना करो, फिक्र ना करो, बस तुम मुझे उठा करके फेंको। जब उन्होंने बहुत जिद की ना, तो बिलाखिर साहब जो है वो तैयार हो गए। लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने नेजों के ऊपर उनको, यानी जो भी नेजे थे उनके ऊपर उनको गोया के लिटाया, और यूं करके, क्योंकि यू नीड अ लिव, क्या कहते हैं, लिवर है, लीवर से जो है ना वो आसान हो जाता है ना वजन को और दूर फेंकना, तो इस तरह से लीवर बना करके उन्होंने फेंका ना, तो वो फ्लाई करते हुए अंदर जाकर के जो गिरे ना, तो वहां पे सारे के सारे काफिर बैठे हुए थे, थके हुए होंगे, जख्मी होंगे, जैसे भी होंगे, ऊपर से जो जाके गिरे ना, तो ये कौन बला आ गई भाई ये क्या चीज नाजिल हो गई हमारे पर, क्योंकि वहमो गुमान भी नहीं हो सकता था कि कोई इंसान आ सकता है। तो इनको फिर जो है ना वो ये जो जो बेनिफिट ऑफ शॉक, उनको शॉक मिला ना, वो संभल ही नहीं पाए उतनी देर में कि इन्होंने जो है वो खड़े होकर के जाकर के दरवाजा खोल दिया। वरना अगर वो संभल पाते ना इनकी, तो वो टिक्का बोटी एक कर देते, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ताला की मदद थी, वो सारे के सारे, ये कौन सी बला आ गई, ये कौन तूफान आ गया, क्या हो गया, तो इतनी देर में उन्होंने दरवाजा खोला। जो दरवाजा खोला तो मुसलमान तो सारे के सारे अंदर आए, और उन्होंने जो काटना पीटना शुरू किया है, तो बहुत सारे मुसलमान भी शहीद हुए, लेकिन काफिरों की मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी, और इतना खून बहा उस जगह पर कि वो बहता बहता जो है ना वो खून, वो पूरे उस एरिया के अंदर यानी खून ही खून था। तो कहते हैं कि वहां पे पत्थर जो थे ना, वो सारे के सारे यानी बस खून ही खून था सारा के सारे, ठीक है। उस जगह का नाम शिब दम पड़ गया, दम कहते हैं अरबी में खून, और शिब कहते हैं घाटी को, छोटी सी वादी को शिब कहते हैं। तो शिब दम उसका नाम पड़ गया है। आज भी अगर आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर शिब दम लिखा हुआ है, ठीक है जी।
हमारे जब अंदर गए थे तो कुछ काफिर से लड़ाई की थी तो उनका हाथ कट गया था
उनका
उसके।
एक हाथ भी कट गया था जाहिर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो बिलाखिर मुसैलमा कज़ाब को, आखिरी बात ये कि वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु जो है ना, वो कफारा अदा करना चाहते थे हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने का। तो उन्होंने वो नेजा संभाल के रखा हुआ था जिससे उन्होंने हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था, और उनके दिल में ये तलब थी कि मैं मुसैलमा कज़ाब झूठे नबी को इसी नेजे से मारूंगा। अल्लाह ताला ने उनकी इस तलब को कबूल कर लिया, और उनको ये तौफीक अता फरमा दी कि उसी नेजे से उन्होंने मुसैलमा कज़ाब को कत्ल किया, और फिर उसका जो है उन्होंने सर काटा वगैरह। इस तरह से जो है वो ये खत्म हुआ फितना, बहुत बड़ा फितना था, और इसके लिए आज भी जो खत्म नबूवत की मेहनत करने वाले हमारे साथी होते हैं, वो यही मुसलमानों को समझाते हैं कि देखो सहाबा ने इतना बड़ा जानी नुकसान किसी और फितने के लिए बर्दाश्त नहीं किया जितना खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए बर्दाश्त किया, ठीक है। तो आज भी जो है ना वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की हिफाजत, नबूवत की बेअसत की हिफाजत, खत्म नबूवत की शक्ल में हो, नबी अलैहिस्सलाम के अहकामात की, दीन की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की हिफाजत, ये सारी की सारी जो है ना उसके लिए हम अपनी जान भी लगा दें, अपना माल भी लगा दें, अपनी सोच भी लगा दें, अपनी सलाहियतें भी लगा दें, ठीक है ना। यही अल्लाह ताला के नज़दीक हमारे लिए सुरखुरुई का सबब बनेगा। अल्लाह ताला इसको हम सबसे कबूल फरमाए, हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
Recording stopped.
कर लेते हैं।
सलाम वालेकुम।